الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. तो इस क्लास में हमने परसों यानी पीर के दिन मारफुल कुरान जिल्द नंबर 1 से मारफुल कुरान का मुकदमा पढ़ना शुरू किया था, और इसमें जो सबसे पहला उनवान है वो वही और उसकी हकीकत पर मबनी है। तो इसमें हमने वही की ज़रूरत को एक अकली तौर पर जो है वो डिस्कस कर लिया था, जो हज़रत मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी दामत कातुन ने लिखा है, और इसमें कुछ और भी एक्स्ट्रा बातें करी थी। ये जो सीरीज ऑफ लेक्चर्स अभी चल रहे हैं ये ज़रा हमारे बाकी लेक्चर से थोड़ा सा हट करके हैं, क्योंकि जैसा कि आपको अंदाज़ा होता होगा कि हमारे जो जो लेक्चर्स होते हैं, बयानात होते हैं, क्लासेस होती हैं, तो वो ज़्यादातर जो है वो इस्लाही उनवानात के ऊपर मबनी होती हैं। यानी इस्लाही का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ गलत है तो उसकी निशानदेही करना, उसके गलत होने की वजूहात को आइडेंटिफाई करना, डायग्नोज करना, ठीक है? सबसे पहले तो गलती को देखना, समझना, उसको तस्लीम करना, राइट? और फिर उसकी वजह को डायग्नोज करना, ठीक है? और फिर उसकी उसका हल बयान करना, ठीक है? तो ये इस्लाही लेक्चर होता है, ठीक है? तो इस्लाही लेक्चर जो होता है ना, ये इसमें यही चीजें होती हैं भाई। ये इलाज मुआलजे वाला सिलसिला है ना, एक 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 मरीज, एक मर्ज है, एक खराबी है, उसका इलाज करना है, ठीक है? तो इलाज के लिए तो यही सब कुछ करना पड़ेगा ना। तो इसके अंदर फिर जरा डांटे शांटे भी खानी पड़ जाती हैं, या देनी पड़ जा यानी करनी पड़ जाती हैं, ठीक है? तो ये एक किस्म के लेक्चर्स होते हैं। दूसरे किस्म के जो बयानात होते हैं वो दूसरी किस्म क्या हो सकती है? वो हो सकती है कि जी इल्मी बयानात, खालिसतन इल्मी बयानात, कि जिसके अंदर के यानी फैक्ट्स बताए जा रहे होते हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट्स बताए जा रहे होते हैं, उसके अंदर जो है वो तरीके समझाए जा रहे होते हैं, फलाना काम करने का ये तरीका है, जैसे इबादत का ये तरीका है, नमाज, ज़कात, रोज़ा, हज, ठीक है ना? और इसके अलावा इस तरह की दूसरे चीज़ों के तरीके, फाइनेंस का, इजार का क्या तरीका है इस्लाम के अंदर वगैरह, तो ये सब जो है ना ये इल्मी बयानात हो। तो इनके अंदर भी थोड़ी बहुत जो है वो गलती की इस्लाह वाला टॉपिक आज आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो है ना ये इल्मी बयानात होते हैं। तो ये जो अब हमारा सीरीज, ये जो हमारी सीरीज अभी चल रही है ना, इनको हम इल्मी बयानात की सीरीज कह सकते हैं, ठीक है? कि आपको बताया जा रहा है कि जी वही क्या चीज होती है, और वही के तरीके क्या हैं, और कैसे जो है ये वही नाजिल हुई, और इस वही को कैसे जो है वो उम्मत ने प्रिजर्व किया, इसकी हिफाजत करी वगैरह वगैरह, ठीक है? एक और किस्म के लेक्चर्स हो सकते हैं जिनमें सिर्फ जो है ना वो किसी की तारीफ बयान की जाए, जैसे अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान की जाए, अल्लाह की अजमत बयान की जाए, ठीक है? या नबी अलैहिस्सलाम की सिफात बयान की जाए, जिसको नातिया कलाम कहते हैं, चाहे वो शेर की शक्ल में हो, चाहे वो नसर की शक्ल में हो, प्रोज की शक्ल में हो, या पोएट्री की शक्ल में हो, ठीक है? तो वो नातिया कलाम होता है, वो हमदिया मजलिस मजलिस होती है, उसमें तारीफें ही तारीफें, और वो तारीफ के काबिल भी हैं, राइट? खालिक तारीफ के काबिल भी हैं, और खालिक के महबूब अलैहिस्सलाम भी तारीफ के काबिल हैं, ठीक है? तो वो एक अलग किस्म के लेक्चर्स होते हैं। तो तीन किस्में जो हैं वो हमने यहाँ पर बयान कर दी। सीरत के जो लेक्चर्स होते हैं ये इनमें इल्मी रंग ज्यादा होता है, ठीक है ना? अलबत्ता शमाइल के, शमाइल वाले जो है उसमें भी इल्मी रंग होता है, लेकिन वो नबी अलैहिस्सलाम की जो है ना वो खूबसूरती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो लिबास की बातें, और मतलब उसमें एक जरा सा तारीफ तहमीद जो है वो जरा ज्यादा होती है। बहरहाल तो ये थोड़ा सा जाहिर है बिल्कुल एग्जैक्ट डिसजॉइंटेड किस्म के ये टॉपिक्स नहीं है, ठीक है, बल्कि इनमें आपस में बहुत सारे ओवरलैप्स भी हो जाते हैं, ठीक है। इस्लाही लेक्चर्स के अंदर भी अच्छा खासा इल्मी का नाम भी होता है उसके अंदर, राइट, वो इल्म से बिल्कुल खाली तो नहीं होते, और उसके अंदर अच्छी खासी जो है अल्लाह ताला की अजमत वगैरह भी बयान हो जाती है, लेकिन डांट डपट जो है ना फिर उसके अंदर सबसे ज्यादा डोमिनेंट रहती है, ठीक है, कि भाई ये गलत कर रहे हैं, हमारी ये गलतियां हैं, हमने इन गलतियों की वजह से जो है वो जलील और रुसवा हुए, इस किस्म के अल्फाज भी फिर आपको सुनने पड़ जाते हैं, ठीक है। तो माइंड ना कीजिएगा, ये बस मेरी मजबूरी है या समझ जाए कि बात करने का सलीका नहीं है, तो उस वजह से आपको इस तरह की बातें सुननी पड़ जाती हैं। बहरहाल तो अब हम वही के बारे में एक इल्मी डिस्कशन कर रहे हैं, तो वही की तारीफ भी जो है ना वो भी हमें मालूम होनी चाहिए। सॉरी ये बैकग्राउंड नॉइस की वजह से मुझे और भी ज्यादा जोर से बोलना पड़ रहा है, क्योंकि वो नेबुलाइजेशन चल रही है ना बच्चे की, तो फिर वो खत्म होगी तभी ये खत्म। अच्छा, तो वही जो है ना फिर क्या है ये, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? कलामुल्लाही, अल्लाह का कलाम, अल-मुनज़्ज़लु अला नबीयिन मिन अंबियाईही, ठीक है, जो कि नाजिल हुआ होता है नबी के ऊपर उसके अंबिया में से, किसी एक नबी के ऊपर जो नाजिल हुआ ना अल्लाह ताला का कलाम, उसको वही कहते हैं, ठीक है। वही के लिए हम तफसीर की क्लासेस के अंदर भी ये बात पढ़ चुके हैं कि अल्लाह ताला ने दो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कुरान मजीद के अंदर, एक है वहयुन और दूसरा है ईहाउन, ईहाउन, ठीक है ना। ये दोनों अल्फाज जो है ना ये किसी को चुपके से कोई बात बता देना, छुप करके राज के अंदाज में किसी को कोई बात कन्वे कर देना, इसके लिए दोनों अल्फाज इस्तेमाल, ठीक है ना, वहयुन और ईहाउन, ईहा, ठीक है, दोनों अल्फाज इस्तेमाल होते हैं इस एक मकसद के लिए। लेकिन जो ईहाउन का लफ्ज है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जी सॉरी डिस्कनेक्ट हो गया था कनेक्शन, 1 मिनट। तो खैर यार, जिस कह रहा था कि ईहाउन का जो लफ्ज है ना ये अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल किया, लेकिन ये खास नबियों के लिए ही खाली इस्तेमाल नहीं हुआ बल्कि गैर अंबिया के लिए भी इस्तेमाल हुआ, ठीक है। तो हत्ता कि ये औरत के लिए भी इस्तेमाल हुआ, ठीक है ना, ये जानवर के लिए भी इस्तेमाल हुआ, हत्ता कि ये शयातीन के लिए भी इस्तेमाल हुआ, कि शैतान जो है ना वो अपने औलिया को, अपने दोस्तों को जो है ना वो अवहा यूही ईहान, वो ऐसे चुपके चुपके जो है वो उनके साथ राजो न्याज किया करते हैं। तो ईहा उनका लफ्ज जो है ये जनरल है, जबकि वहयुन का जो लफ्ज है ये खास अंबियाए कराम के लिए इस्तेमाल होता है, खास अंबियाए कराम के लिए, और किसी दूसरे के लिए इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ना शुरू करते हैं जो कि पेज नंबर 23 के ऊपर है, 23 नंबर सफ़े के ऊपर, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नुज़ूले वही के तरीके। तो इसके तहत हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातहुम फरमाते हैं कि वही व रिसालत का ये मुकद्दस सिलसिला सरकारे दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो गया, अब किसी इंसान पर ना वही नाजिल होगी और ना इसकी ज़रूरत है। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुख्तलिफ तरीक़ों से वही नाजिल होती थी। सही बुखारी की एक हदीस में हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती हैं कि एक मरतबा हजरत हारिस बिन हिशाम रज़ी अल्लाह तआला अन्ह ने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही किस तरह आती है। तो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कभी तो मुझे घंटी की सी आवाज सुनाई देती और ये वही की सूरत वही कि ये सूरत मेरे लिए सबसे ज्यादा सख्त होती है। हदीस मुबारका के अल्फाज हैं, अहयानन यातीनी मिस्लु सलसलातिल जरसी वहुआ अशद्दु अलैया। ठीक है, कि वो एकदम से जो है ना वो मेरे पास आ जाती है घंटी की आवाज में, और वो मेरे ऊपर सबसे ज्यादा सख्त होती है, सबसे ज्यादा शदीद होती है। ठीक है, फिर जब ये सिलसिला खत्म होता है तो जो कुछ उस आवाज ने कहा होता है मुझे याद हो चुका होता है, और कभी फरिश्ता मेरे सामने एक मर्द की सूरत में आ जाता है। तो ये सही बुखारी की हदीस है। तो इसके अंदर जो है ना वो वही के आने की दो सूरतें नबी अलैहिस्सलाम ने बताई, सहाबी के सवाल करने के जवाब में बताई। ठीक है ना, तो अक्सर जो बातें हमें पता चली है ना वो किसी सवाल के जवाब में ही पता चली, और कभी नबी अलैहिस्सलाम बगैर किसी के सवाल किए हुए खुद भी जो है वो बता दिया करते थे, या खुद सवाल किया कर लिया करते थे सहाबा से, और फिर सहाबा जब जवाब देते थे कि अल्लाहु रसूलु आलम, तो फिर नबी अलैहिस्सलाम खुद जवाब दे दिया करते थे। ठीक है, तो ये वही की पहली सूरत है, सलसलतुल जर्स, घंटी की आवाज। जर्स जो है वो घंटी को कहते हैं, और उसकी जो जो वाइब्रेशन होती है ना उसको जो है वो सलसला। तो हजरत फरमाते हैं इसमें कि इस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही की आवाज को घंटियों की आवाज से जो तशबीह दी है, शेख मुहियुद्दीन इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह ने, जो कि बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे, दो इब्ने अरबी जो है ना वो हमारी तारीख में गुजरे हैं, एक तो इब्ने अरबी थे बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग, ठीक है ना, और दूसरे इब्ने अरबी थे बहुत बड़े फकीह, ये वो वाले इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह फकीह जो थे। तो उन्होंने इसका मतलब ये बयान किया है कि एक तो वही की आवाज घंटी की तरह मुसलसल होती, ठीक है ना, ये जो तशबीह दी गई है ना ये इस वजह से नहीं कि घंटी के अंदर जिस किस्म का तरन्नुम होता है, जिस किस्म की जो है ना उसकी म्यूजिक होती है, तो वही की आवाज उस म्यूजिकल आवाज की तरह से होती है। नहीं, तरन्नुम की वजह से तशबीह नहीं दी गई, बल्कि तसलसुल की वजह से तशबीह दी गई। जैसे घंटी जब बजती है ना तो उसमें एक तसलसुल होता है, वो बजती चली जाती है, स्पेशली अगर आप अपने फोन के ऊपर अलार्म क्लॉक लगाएं और उसके अंदर जो है ना वो घंटी की आवाज रख लें, तो फिर सुबह के वक्त जब नींद आई भी होती है वो घंटी बज रही होती है, तो फिर वो दिमाग के अंदर जो है ना वो बजनी शुरू हो जाती है, मुस्तकिल जो है वो कंटिन्यूअसली
लेकिन
बज रही होती है। तो
ये
ठीक है, तो इस तसलसल की वजह से तशबीह दी गई है, और ये बीच में जो है ना वो टूटती नहीं है। दूसरे, घंटी जब मुसलसल बजती है तो अमूमन सुनने वाले को उसकी आवाज की सिमत मुतय्यन करना मुश्किल होता है कि किस डायरेक्शन से जो है ना ये वाली आवाज आ रही है, क्योंकि उसकी आवाज हर जहत से आती हुई महसूस होती है। ठीक है, हर डायरेक्शन से आती हुई महसूस होती है, और कलाम इलाही की भी ये खसूसियत है कि उसकी कोई एक सिमत नहीं होती बल्कि हर जहत से आवाज सुनाई देती है। इस कैफियत का सही इदराक तो बगैर मुशाहदे के मुमकिन नहीं, यानी जब तक हमें खुद मुशाहिदा ना हो ना तो हम इसका अंदाजा नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन इस बात को आम जहनों से करीब करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे घंटियों की आवाज से तशबीह दी है, यानी समथिंग दैट पीपल कैन रिलेट टू। ये सबसे अहम चीज होती है उस्ताद के लिए कि वो शागिर्द को अपनी बात जो है ना वो इस अंदाज में समझाए जो कि शागिर्द को समझ में आ सके, और शागिर्द को सबसे ज्यादा कब समझ में आती है उसको, एक मिनट क्या कह रहे हैं, तो उसको उस वक्त समझ में आती है जब वो ऐसी मिसालों से बयान की जाए जो कि उसके मुशाहिदे के अंदर मौजूद होती है मिसालें। ठीक है, इसी को अंग्रेजी में कहते हैं समथिंग दैट द स्टूडेंट कैन रिलेट टू। ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम हमेशा ऐसी बात किया करते थे जिससे कि सहाबा रिलेट कर सकें। इसी वजह से सैयारों के बारे में और सितारों के बारे में बात फरमाई कि उसको जो है ना वो एक जानवर जो अल्लाह ताला की चरागाहों के अंदर चर रहा है वो किसी सितारे को खा जाता है, तो ऐसे जो है ना वो सितारा मर जाता है। अब वो जानवर जो है वो चरागाहों में चर रहा है, तो ये यानी आज की जो कॉस्मोलॉजी है, स्पेस साइंसेज हैं, तो वो कहेंगे कि ये किस किस्म की जो है ना वो मिथोलॉजी वाली बात है ये तो, राइट, ये तो बिल्कुल इमेजिनरी और अजीब गरीब किस्म की पुराने जमाने की बातें, जानवर चल रहा है वो उसको खा जाता है। ठीक है ना, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम हकीकत बता रहे थे कि और ये मिसाल सिर्फ लोगों की समझ के हिसाब से बयान कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर भी वही घंटियों की जो जो मिसाल दी, क्योंकि लोग फेमिलियर थे ना घंटियों की आवाज से, इस वजह से, ठीक है। अच्छा, आपका इंटरनेट जो है वो अनस्टेबल है, ये वो तो मेरा भी इंटरनेट अनस्टेबल लग रहा है। तो ठीक है, मतलब डू आई हैव टू डू एनीथिंग, डू आई हैव टू डू एनीथिंग बाबू, तो मुझे बताएं, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो कोई मुझे बताने की जरूरत, खैर एनीवे, तो ये जो थी वो सबसे ज्यादा शदीद होती थी, क्योंकि इसमें ना फिर उलमा ने मजीद इसकी वजह बताई कि ये जो होती थी ना एक आवाज, ये कुछ उलमा कहते हैं कि फरिश्तों के परों के फड़फड़ाने की आवाज होती, उसकी वजह से जो है ना वो ऐसी आवाज क्रिएट हो रही होती थी, लेकिन वो फरिश्ता जो है ना वो नजर नहीं आ रहा होता था नबी अलैहि सलाम, ठीक है। और कुछ ने फरमाया कि ये बाकायदा अल्लाह ताला की आवाज होती जो कि हर तरफ से आ रही होती थी, जैसे कि मूसा अलैहि सलाम से कलाम का जो हमने जिक्र पढ़ा था, वकल्लम अल्लाह मूसा तकलीमा, सूरह ताहा की तफसीर के अंदर, तो वहां पे हमने ये बात पढ़ी थी कि मूसा अलैहि सलाम जब अल्लाह ताला से कलाम करते थे ना, तो अल्लाह ताला की जो आवाज आती थी वो हर जिहत से आ रही होती थी, किसी एक डायरेक्शन से नहीं आ रही होती थी, और वो सिर्फ नबी, और वो सिर्फ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कानों के रास्ते से दाखिल नहीं हो रही होती थी, बल्कि पूरे के पूरे जिस्म से दाखिल हो रही होती मूसा अलैहिस्सलाम के अंदर, ठीक है ना। तो अब नबी अलैहिस्सलाम को भी जो ये आवाज आ रही है ना, तो इसकी एक समझ या एक अंडरस्टैंडिंग ये है कि नबी अलैहिस्सलाम को भी इसी तरीके से ये आवाज आ रही होती थी, हर डायरेक्शन से और हर तरफ से ये दाखिल हो रही होती थी नबी अलैहिस्सलाम की रूह के अंदर। अलबत्ता फर्क ये था नबी अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान, ये क्या फर्क था अगर आपसे पूछें, सो दैट वी कैन नो हाउ मच अटेंशन यू आर पेइंग, क्या फर्क था मूसा अलैहिस्सलाम और नबी अलैहिस्सलाम के? आप सलाम को भी अल्लाह की आवाज आ रही है, मूसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह की आवाज आ रही है, तो मूसा अलैहिस्सलाम की यूनिकनेस क्या थी? जब तक मैं पंखा ही टेस्ट करूँ, ठीक है, नॉट थ्रू जिब्राइल अलैहि सलाम, नहीं ना भाई, दोनों को डायरेक्ट आ रही है, यही तो हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, दोनों को डायरेक्ट आ रही है। इट वॉज टू वे, वॉट वॉज टू वे, रिप्लाई बैक कर सकते थे, एग्जैक्टली, ठीक है। यानी मूसा अलैहि सलाम रिप्लाई बैक कर रहे होते थे और अल्लाह ताला फिर मूसा अलैहि सलाम को जवाब दे रहे होते थे, नबी अलैहि सलाम के साथ ये मुकालिमा नहीं हो रहा होता, मुकालिमा नहीं हो रहा होता, ठीक है ना। तो ये फर्क है नबी अलैहि सलाम के इस तरह की वही में और मूसा अलैहि सलाम के मुकालिमे के अंदर, मुकालिमा इज ऑलवेज टू वे, ठीक है ना। जब भी उसके लिए लफ्ज भी जो है ना वो तकाबला वाले बाप से आया है, ठीक है, सरफ वाले हजरात जानते हैं। तो अच्छा, दूसरा जो है इसके अंदर शिद्दत जो होती थी उसकी भी रीजन उलमा ने लिखी है कि ये जो कलाम था ना, ये मूसा अलै ये सॉरी नबी अलैहिस्सलाम इंसान, बंदा बशर, ठीक है ना, और दूसरी तरफ कौन, या तो परवरदिगार, ठीक है ना। अब परवरदिगार कौन है? खालिक है, मालिक है कुल जहान का, और यहां पर जो है वो एक इंसान है, बशर है, बेशक सबसे अफजल बशर है, लेकिन है तो बशर ही ना। तो इन दोनों जिन्सों के दरमियान जो है ना वो मुनासिबत नहीं है, वो बिल्कुल मुख्तलिफ हस्ती है अल्लाह रब्बुल इज्जत की, और ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ हस्ती है अल्लाह के बंदे की, ठीक है ना। तो ये मुनासिबत का ना होना जो है ना इसकी वजह से मुश्किल पेश आती है, ठीक है ना। तो तसव्वुफ के अंदर भी यही होता है कि हाँ भाई जो शेख हो तो उसके साथ कुछ मुनासिबत होनी चाहिए, मुनासिबत ना हो तो फिर मुश्किल पेश आती है ना। जैसे शेख साहब जो है वो अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, आपको अंग्रेजी आती नहीं है, तो फिर आप में और शेख साहब में मुनासिबत नहीं है, अब आपको ट्रांसलेशन करवानी पड़ेगी, आपको इंटरप्रिटेशन करवानी पड़ेगी, और आपको खुद या तो अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो मुनासिबत के ना होने की वजह से मुश्किल होती है ना, तो नबी अलैहिस्सलाम को भी इस वजह से मुश्किल हो रही होती थी कि भाई वो एक अलग मखलूक, सॉरी अल्लाह ताला तो खालिक है और नबी अलैहिस्सलाम मखलूक है, हत्ता कि इवन अगर फरिश्ता के फड़फड़ाने वाली भी आवाज होती थी ना, तो फरिश्ता भी एक अलग मखलूक है ना, वो भी नबी अलैहिस्सलाम की जिन्स से तो नहीं है ना, तो वो भी शिद्दत की वजह हो सकती है। अच्छा, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि जब इस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ता था। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा इसी हदीस के आखिर में फरमाती हैं कि मैंने सख्त जाड़ों के दिन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुए देखी है। ऐसी सर्दी में भी जब वही का सिलसिला खत्म होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक पेशानी पसीने से शराबोर हो चुकी होती। ठीक है ना, यानी एक ऐसी ऐसी हीट एनर्जी, ऐसी गर्मी जो है ना वो आप सल्लम के ऊपर आती थी जैसे कि से ना पसीने से शराबोर। अब हम भी हमारे अंदर भी कोई ऐसी ऐसा गर्म वजूद अगर दाखिल हो रहा हो ना जिसके अंदर एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी क्या है, ये एनर्जी है ना। ठीक, जो फिजिक्स पढ़ने वाले लोग हैं जानते हैं इस बात को। ठीक है ना, तो अब मॉलिक्यूल्स जो है वो हिल रहे होते हैं ज्यादा तेजी के साथ जो हॉट मैटर होता है उसके अंदर। ठीक है, तो हम चाय पीते हैं तो सर्दी के मौसम में भी चाय पीने के बाद जो है ना वो थोड़ी सी गर्मी चढ़ जाती है। सूप पीते हैं तो सूप पीने से गर्मी चढ़ जाती है, कॉफी पीने से और भी ज्यादा। ठीक है, तो ये तो बहुत यानी सबसे ज्यादा एनर्जी वाली चीज थी ना वही। ठीक है, तो इससे फिर पेशानी मुबारक पसीने से शराबोर हो चुकी होती थी। एक और रिवायत में है कि हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सांस रुकने लगता था। और एक जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मेरे अंदर से ना रूह खींची जा रही है। ठीक है, ऐसी शदीद कैफियत होती थी कि रूह खींचने का मतलब क्या होता है कि रग रग रेशे रेशे के अंदर एक चीज मौजूद है वो खींच करके बाहर निकाली जा रही। कितनी शदीद तकलीफ वाली ये कैफियत होती है। चेहरे अनवर मुतगैर होकर खजूर की शाख की तरह जर्द पड़ जाता था। सामने के दांत सर्दी से कपकपाने लगते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना पसीना आता कि उसके कतरे मोतियों की तरह ढलकने लगते थे। ठीक है, यानी वो जो जो पसीना आ रहा होता था ना वो सर्दी के मौसम के अंदर, तो दांत जो है वो सर्दी से कपकपा रहे हैं लेकिन एनर्जी इतनी ज्यादा है कि गर्मी महसूस हो रही है और जो है ना वो पसीना यानी वो पर्सपिरेशन हो रही है आपके स्किन स्किन के अंदर से। ठीक है, तो दोनों चीजें एक साथ साथ चल रही हैं, कपकपा भी रहे हैं और पसीना भी आ रहा है। वही की इस कैफियत में बाज औकात इतनी शिद्दत पैदा हो जाती कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जानवर पर उस वक्त सवार होते वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बोझ से दब कर बैठ जाता। ठीक है, यानी जो आप सल्लम के अंदर एनर्जी ट्रांसफर हो रही होती थी उससे बाकायदा फिजिकल वेट जो है वो इंक्रीज इंक्रीज हो जाता था और जानवर दब के बैठ जाता था। और जानवर के अंदर कितनी ताकत होती है, ऊंट के अंदर कितनी ताकत होती है ना। और एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर अकदस हजरत जैद बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु के जानू पर रखा हुआ था कि इसी हालत में वही नाजिल होनी शुरू हो गई। इससे हजरत जैद रजी अल्लाह तआला अन्हु की रान पर इतना बोझ पड़ा कि वो टूटने लगी। ठीक है, अच्छा, बाज़ औक़ात इस वही की हल्की हल्की आवाज़ दूसरों को भी महसूस होती थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर के करीब शहद की मक्खियों की भिनभिनाहट जैसी आवाज़ सुनाई देती थी, या बजिंग। ठीक है, अच्छा, तबी मसनद अहमद रहमतुल्लाह किताब सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हो गई पहली कसम सलसलतुल जर्स। ठीक है, और ये सबसे अशद होती थी आप के ऊपर। फिर उसके बाद वही की दूसरी सूरत ये थी कि फरिश्ता किसी इंसानी शक्ल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचा देता था। ऐसे मौके पर अमूमन हजरत जबरील अलैहिस्सलाम मशहूर सहाबी हजरत दाहिया कल्बी रजी अल्लाह ताला अन्हु की सूरत में तशरीफ लाते थे। दाहिया कल्बी रजी अल्लाह ताला अन्हु सबसे खूबसूरत आदमी थे सहाबा कराम के दरमियान। वैसे तो नबी अलैहिस्सलाम उनसे भी ज्यादा खूबसूरत थे लेकिन दहिया कल्बी ऐसे। ठीक है, तो ऐसे थे कि वो ना अपने मुंह के ऊपर कपड़ा लपेट करके निकला करते थे कि लोग जो है ना वो उन्हीं की तरफ देखना शुरू हो जाएंगे और उनको जो है वो नजर लग जाएगी या उनको और कोई और मसला ना हो जाए। तो इनकी शक्ल में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आया करते थे अक्सर औकात। अलबत्ता बाज औकात किसी दूसरी सूरत में भी तशरीफ लाए हैं। ठीक है, जैसे कि वो जो हदीस जिब्राइल कहलाती है कि एक आदमी आया बिल्कुल हम उससे वाकिफ नहीं थे लेकिन उसके कपड़े बिल्कुल साफ शफाफ थे और बाल भी बिल्कुल सही थे और लेकिन बाहर से आया हुआ था। अब हम हैरान रह गए कि जो रेगिस्तान से होता हुआ आता है तो और सफर से आता है तो उसके तो वो हालत खराब हुई भी होती है, कपड़े भी जो है वो परागंदा हुए होते हैं। इस शख्स के तो सब कुछ एकदम ऐसा है जैसे कि लोकल आदमी है लेकिन ये लोकल तो नहीं था। तो उस वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम बिल्कुल एक नई सूरत में आए थे। ठीक है, जब हजरत जबराइल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में वही लेकर आते तो नुजूल वही की यह सूरत हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सबसे आसान होती थी। तो क्यों आसान होती थी, क्यों होती थी सबसे आसान, इसकी लॉजिकल रीजन है, क्या उलमा बयान फरमाते हैं वो आप बता दीजिए। वही की तीसरी सूरत यह थी कि हजरत जबराइल अलैहिस्सलाम किसी इंसान की शक्ल इख्तियार किए बगैर अपनी असली सूरत में दिखाई देते थे, लेकिन ऐसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम उम्र में सिर्फ 3 मरतबा हुआ है। तो आसान क्यों होती थी, किसी ने जवाब ही नहीं दिया भाई। तो ऐसा 3 मरतबा हुआ है जबराइल अलैहिस्सलाम अपनी असल शक्ल में तशरीफ लाए। एक मरतबा इस वक्त, उस वक्त जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हजरत जबराइल अलैहिस्सलाम को उनकी असल शक्ल में देखने की ख्वाहिश जाहिर फरमाई थी, ठीक है। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है वो 600 परों के साथ जाहिर हुए, दूसरी मरतबा मेराज में, और तीसरी बार नबूवत के बिल्कुल इब्तदाई जमाने में मक्का मुकरमा के मकाम अजियाद पर, ठीक है ना, जहाँ पे आजकल हम होटल में जाकर के क़याम फरमाते हैं, अजियाद का जो इलाका है, तो वहां पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम नजर आए थे। वो पूरे होराइजन के ऊपर जो है ना, वो पूरा जो उफुक था वो भर गया था जिब्राइल अलैहिस्सलाम से, ठीक है ना, उनकी वजूद से, ठीक है। और उस वक्त मेरे साहब ने बताया था कि उसके 600 पद थे। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम हिमसेल्फ लुक्ड वेरी ऑसम, इस वजह से आपने मिस कर दिया, सबने ही मिस कर दिया, थोड़ी देर पहले बात तो हुई थी, एज इट वाज नॉट डायरेक्टली अपॉन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बट जिब्राइल अलैहिस्सलाम ब्रिंगिंग हिमसेल्फ, नहीं वजह कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये अहवना अहवानुहु अलैया, ठीक है ना, ये जो इंसान की शक्ल में आते थे, आप फरमाते हैं वह हुआ अहवानुहु अलैया, वो मेरे ऊपर सबसे नरम और सबसे हल्की सूरत होती थी, ठीक है ना, इट वॉज लाइक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन, मखलूक की शक्ल में थे जी, इंसानी नस्बत की वजह से, नस्बत की वजह, बल्कि मुनासबत का लफ्ज इस्तेमाल किया था, मुनासबत, नबी अलैहिस्सलाम भी इंसान और वो भी इंसानी शक्ल सूरत के अंदर आते थे, तो मुनासबत थी इस वजह से, ठीक है ना, जबकि पिछली वाली जो सूरत थी उसके अंदर मुनासबत नहीं थी, वो खालिक ये मखलूक बिल्कुल ही जो है वो ऑपोजिट। और अगर फरिश्ते भी थे तो फरिश्ते और इंसान के दरमियान भी तो फर्क है ना, ठीक है। तो ये वजह आपको बताई थी, इस वजह से आपसे पूछा भी था सवाल कि आपको कितना याद है और कितना समझ में आया। अच्छा, इंसान उन्स से है, अच्छा, नहीं ये भी एक अच्छा जवाब है, इंसान उन्स से है तो उन्स के साथ जो है वो उन्सियत होती है, बहरहाल ठीक है, ये भी सही। वही की तीसरी सूरत ये थी कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम किसी इंसान की शक्ल इख्तियार किया अपने असल शक्ल के अंदर आया, ये तो हो गया ना। चौथी सूरत बराह रास्त और बिला वास्ता अल्लाह तबारक व तआला से हम कलामी की है, ये शर्फ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेदारी की हालत में सिर्फ एक बार यानी मेराज के वक्त हासिल हुआ है, अलबत्ता एक मरतबा ख्वाब में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से हम कलाम हुए हैं, ठीक है, एक मरतबा ख्वाब में और एक मरतबा बेदारी में, जो कि मेराज का वाकया था। और वो मेराज का वाकया जब नबी अलैहिस्सलाम सिदरतुल मुंतहा से आगे बढ़ गए, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जो है वो मजीद आगे जाने से माजरत कर ली कि आगे मेरे पर जलते हैं, यानी मैं इससे आगे मैं नहीं जा सकता, नबी अलैहिस्सलाम पर अकेले गए। अब वहां पर जाकर के नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला को देखा या नहीं देखा, इसके अंदर जो है ना वो सहाबा के दरमियान इख्तिलाफ है, कुछ सहाबा इसके कायल है कि देखा, कुछ है कि नहीं देखा, और हिजाब के पीछे से बातचीत हुई, बातचीत के ऊपर तो कोई इख्तिलाफ नहीं, अल्लाह ताला के साथ हम कलामी तो हो ही है, अत्तहियात लिल्लाहि वस्सलावात वस्सलातु वस्सलाम, जो अत्तहियात जो है वो उसका तोहफा भी उसी वक्त मिला वगैरह, नमाज का तोहफा मिला, ठीक है, लेकिन देखने के ऊपर इख्तिलाफ है। तो ये जो है वो चौथी सूरत हो गई, इसको हम कलामी कहते हैं। इसके लिए उलमा ने जो है ना वो एक टर्म कॉइन कर ली, कलाम इलाही, ठीक है। जो वो थी ना जर्स वाली जो थी उसको, यानी वही कल्बी के अल्लाह ताला जो है ना वो कल्ब में इल्का फरमा देते थे, चाहे वो ख्वाब की शक्ल में इल्का हो जाए, ठीक है, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वही जो है वो ख्वाब की शक्ल में आई कि आपने जो है वो अपने बेटे को ज़बह करना है या उसकी कुर्बानी देनी है, ठीक है, तो वो वही कल्बी कहलाती है, कलाम इलाही की ये वाली किस्म हो गई, चौथी वाली किस्म, ठीक ठीक है, कि अल्लाह ताला ने कलाम फरमाया, और बाकी जो किस्में हैं वो वही मलकी कहलाते हैं, मलक मलक फरिश्तों को कहते हैं। ठीक है, तो पांचवी तस्म भी फिर वही मलकी की एक कस्म हुई, कि वही की पांचवी सूरत ये थी कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम किसी भी सूरत में सामने आए बगैर आप के कल्ब मुबारक में कोई बात इल्का फरमा देते थे। इसे इस्तलाह में नफसा फिर रोई रो कलम ना, या रूह है या रो है, आई थिंक चेक किया था लेकिन आंसर कर गया। तो मतलब जैसे जी में कोई बात डाल देना, ठीक है ना, किसी के नफ्स में कोई बात डाल देना, किसी के जो है वो जहन में कोई बात डाल देना, मुहावरतन इसको दिल में बात डाल देना भी कहते हैं। ठीक है, तो ये पांचवी तो सब कहलाती है। ठीक है, तो ये जिब यानी फरिश्ता जो है ना, ये भी इंसान के दिल के अंदर आइडियाज डालता है। ठीक है, और वो वाली जो किस्म थी वो अलग थी, सलसलतुल जर्स, वो एक अलग किस्म थी, ये एक अलग किस्म है। ठीक है, हमारे भी हर इंसान के कल्ब के साथ एक फरिश्ता और एक शैतान दोनों मौजूद है। ठीक है ना, तो हमारे दिल के अंदर या हमारे जी के अंदर, ठीक है ना, जो भी अच्छा ख्याल आता है ना, जिसको कि इल्हाम कह दिया जाता है, ठीक है, तो ये फरिश्ता जो है वो डाल रहा हो, और जो भी बुरा ख्याल आ रहा होता है वो शैतान डाल रहा होता है। ठीक है, तो ये सिलसिला हर इंसान के साथ चलता रहता है। तो नबी अलैहिस्सलाम के साथ खसूसियत क्या थी कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ये काम कर रहे होते थे। ठीक है, अच्छा ख्याल डाल देने वाला काम जिब्राइल अलैहिस्सलाम कर रहे होते थे। ठीक है, जो कि यानी वही की वही यानी अच्छा ख्याल तो कोई भी इल्हाम हो गया ना, लेकिन बाकायदा वही कोई अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है, तो वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी अलैहिस्सलाम के कल्ब में डायरेक्टली भी डाल रहे होते थे। ठीक है, तो ये हो गई पांच किस्में वही की। तो ये एक आप समझ लें, एक डिस्ट्रीब्यूशन या टाइप कह सकते हैं एक तरीके से, और दूसरे तरीके से अगर आप किस्में बनाएं वही की, तो वो तीन किस्में बनती हैं, एक वही कल्बी, ठीक है, और एक कलाम इलाही, और तीसरी जो है वो वही मलकी। और वही मलकी मतलब जो फरिश्ते के वास्ते से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचे। तो फिर वही कल्बी जो है वो फरिश्ते के अलावा, ठीक है, तो वो ख्वाब जो है ना, ये ख्वाब फरिश्ते की तरफ से नहीं होता, यानी फरिश्ता बीच में नहीं होता ख्वाब के अंदर, ख्वाब जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से। ठीक है, तो वो वही कल्बी के अंदर आता है, और इसी तरीके से ये जो यानी सलसलतुल जर्स भी जो है वो एक तरह से फिर वही कल्बी ही हो गया, या ये कि ख्वाब के अंदर अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुछ चीज़ इल्का फरमा दी, या वैसे ही जो है वो बेदारी की हालत में अल्लाह ताला ने डायरेक्टली जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कोई बात इल्का फरमा दी, तो वो वही कल्बी होते हैं। बहरहाल ये इसमें उलमा ने बनाई है, अब एग्जैक्टली जो है वो उसमें कौन सी वाली कसम, इसकी हमें इंशाल्लाह की कोई ज़रूरत नहीं है, इल्मी डिस्कशन है, तो बस हमारे इल्म में इजाफा हो गया, अल्लाह ताला इस इजाफे को हमारे लिए फायदे का सबब बना दे। फिर इसके बाद अगला जो मौजू है मुकदमे के अंदर वो है तारीख नुजूल कुरान। ठीक है, कुरान करीम दरअसल कलाम इलाही है, इसलिए अजल से लौह महफूज में मौजूद है, यानी लौह महफूज एक अलग चीज है, कुरान मजीद उसके अंदर मौजूद है, जिस तरह उसके अंदर पूरी की पूरी तकदीर मौजूद है। ठीक है ना, कुरान मजीद के अलावा तौरात भी उसमें मौजूद है, इंजील भी उसके अंदर मौजूद है, सारी आसमानी किताबें उसके अंदर मौजूद हैं लिखी हुई, इसके अलावा किस इंसान ने क्या करना है, क्या होना है दुनिया के अंदर, अजल के अंदर, सब कुछ उसके अंदर लिखा हुआ, वो लौहे महफूज है। ठीक है, टैबलेट, और ये लौहे महफूज के बारे में हदीस मुबारक से पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है ना वो सबसे पहले लौहे महफूज के ऊपर सब कुछ लिखवा दिया, किसके जरिए से, कलम के जरिए से, बस एक पेन अल्लाह ताला ने तख्लीक किया कलम, और उस कलम को हुक्म दिया लिखना शुरू कर दो, उसने लिखना शुरू कर दिया और सब कुछ उसके अंदर लिख दिया। ठीक है, तो ये है लौहे महफूज, कुरान इज अ पार्ट ऑफ दैट। कुरान करीम का इरशाद है, बल हुआ कुरान मजीद फी लौहे महफूज, बल्कि ये कुरान मजीद है लोहे महफूज के अंदर। नीचे फुटनोट्स में हजरत ने लिखा है कि कारीन के लिए ये बात यकीनन सहूलत और खुशी का बायस होगी कि इस एडिशन में तमाम आयात कुरानियाँ जो हवाले के तौर पर लिखी गई हैं का सूरत नंबर और आयत नंबर भी दे दिया गया है। जज़ाकअल्लाह खैर कसीरा। अच्छा फिर लोहे महफूज, असल में इसका मैंने मुताला पहले नहीं किया था तो इस वजह से अभी आपके सामने फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ क्योंकि 2 4 महीने अभी रहते हैं क्लास के लिए। फिर लोहे महफूज से इसका नुजूल 2 मरतबा हुआ है। एक मरतबा ये पूरे का पूरा आसमान दुनिया से बैत इज्जत में नाजिल कर दिया गया। बैत इज्जत जिसे अल बैतुल मामूर भी कहते हैं, काबतुल्ला के महाजात में आसमान पर फरिश्तों की इबादत का है। वॉट इज लोहे महफूज? माई डॉटर इज आस्किंग वॉट इज लोहे महफूज। लोह कहते हैं टैबलेट को, ठीक है, जिस तरह आजकल टैबलेट्स नहीं होती, ठीक है, उन टैबलेट्स के ऊपर जो है ना वो फिर आप कुछ लिख भी सकते हैं, कुछ पढ़ भी सकते हैं। तो ये टैबलेट तो हमारे पास ये गैजेट फॉर्म में होती है ना, एलसीडी या एलईडी स्क्रीन होती है, उसके ऊपर आप जो है वो लिखते हैं। लेकिन अगर यही चीज जो है वो लकड़ी की बनी हुई हो या किसी और मटेरियल की बनी हुई हो तो उसको भी टैबलेट कहते हैं, ठीक है ना। यानी इट्स नॉट अ एग्जैक्टली अ बुक, बट इट्स ए लाइक ए मीडियम दैट यू कैन राइट ऑन एंड देन रीड फ्रॉम, ठीक है। तो ये एक टैबलेट है, अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी टैबलेट बनाई, ठीक है ना। ये इट्स लाइक पूरे आसमान और जमीन से जो है ना वो ज्यादा बड़ी कोई चीज है। उसके ऊपर अल्लाह ताला ने सब कुछ लिखा हुआ है, बल्कि लिखवाया हुआ है पेन के जरिए से, ठीक है। उसको लॉह और महफूज क्यों? बिकॉज वो प्रिजर्व है, उसकी हिफाजत हुई भी है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, उसके अंदर कोई जो है वो करप्शन नहीं कर सकता, इस वजह से उसको महफूज भी कहा जाता है। क्या लिख रहे हैं? इफ समवन डज कॉन्स्टेंट वकूफ ए कल्बी देन इज इट करेक्ट अंडरस्टैंडिंग दैट द शैतान कैन नॉट डू एनी वसवसा एंड देन द थॉट्स विल बी ओनली इंस्पायर्ड बाय द एंजल। वॉट विल बी द रोल ऑफ नफ्स इन दिस स्टेट? विल इट ऑल्सो बी इंफ्यूजिंग थॉट्स बेस्ड ऑन द स्टेज इट इज? जहां तक आपने नफ्स का सवाल किया ना, तो ये तो हमने सूरह यूसुफ के अंदर काफी तफसील से डिस्कस किया था कि नफ्स जब नफ्स मुतमइन्ना बन जाता है तो फिर वो दुबक कर एक कोने में बैठ जाता है, राइट। जैसे कमरे के अंदर आपका जो दुश्मन था ना, उस दुश्मन की आपने अच्छी सारी अच्छी खासी जो है ना वो ठुकाई लगाई, खूब उसको मारा, खूब उसको जो है ना वो यानी उसकी जान निकाल दी, जिंदा तो वो है लेकिन खूब उसकी जो है ना वो आपने जबरदस्त कस के उसकी खबर ली है ना, अब वो जो है ना वो दुबक के ना लफ्ज समझते हैं उर्दू के अंदर, दुबक के बैठ गई है कोने में, ठीक है। तो ये है नफ्स मुतमईन, ये इत्मीनान के साथ बैठा हुआ है, अब ये आपको तंग नहीं करेगा, आप ये आपके साथ जो है ना वो मसले नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अब आपको जो है ना ये यानी जिदों के ऊपर जो है वो उकसाएगा नहीं, क्योंकि अब ये नफ्स मुतमईन बन गया, ठीक है। बाकी ये कि वकूफ कल्बी में क्या होता है कि शैतान कैन नॉट डू एनी वसवसा, तो शैतान के वसवसे जो हैं वो देखें इतना ज्यादा वकूफ कल्बी जो है ना कि बिल्कुल शैतान जो है वो कोई भी कभी भी वसवसा ना डाल सके, ऐसा होना जो है ना ये हम जैसे इंसानों के लिए बहुत महाल है, ठीक है। तो इस वजह से जो है ना वो कुछ ना कुछ तो रहता है मामला, ठीक है। तो लेकिन फिर भी जितना ज्यादा इंसान जिक्र करता है और जितना ज्यादा अपने नफ्स को कुचलता है तो उतना ज्यादा उसको जो है ना ये वाली कैफियत मिलती है कि उसको फिर बुरे वसवसे जो है ना वो कम से कम से कम से कम से कम होते चले जाते, ठीक है, और रिप्लेस होते चले जाते हैं अच्छे ख्यालात से, रिप्लेस होते जाते हैं अच्छे आइडिया से, अच्छी फिक्रों से, अच्छी सोचों से, ठीक है। तो ये रिप्लेसमेंट जो है ना एक्चुअली इट्स इट हैज टू बी रिप्लेस्ड, ये जो ख्यालात है ना इंस्पिरेशंस, ठीक है। अगर आप अच्छे ख्यालात को अपने वजूद में, अपने सिस्टम में, अपनी लाइफ में दाखिल नहीं करेंगे तो फिर ये वसाविस के लिए देर विल ऑलवेज बी स्पेस, देर विल ऑलवेज बी स्पेस, ठीक है, तो ये खन्नास जो है ना, ये तो काम करता रहेगा, इसको तो जब तक आप जगह छोड़ेंगे ना इसके लिए, उस वक्त तक ये काम करता रहेगा। ठीक है, तो ये वकूफ कल्बी जो है ना, वो गुनाह छोड़ देने को कहते हैं। वकूफ कल्बी का मतलब ये है इल्म और इरादे से गुनाह ना कर, ठीक है ना, लेकिन वसवसे खत्म हो जाना, ये वकूफ कल्बी इज नॉट एग्जैक्टली दैट। वकूफ कल्बी की जो डेफिनेशन है ना, वो उसको उधर ही रखना है खाली, ठीक है ना, ये ऐसा नहीं है। यानी आप जो है ना, वो सेवन्थ हेवन के ऊपर नहीं पहुंच जाते हैं। वकूफ कल्बी किया बहुत ज्यादा, अब आप जो है ना वो हवाओं में उड़ना शुरू हो गए और पता नहीं कहाँ पहुंच गए, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता। तो वो बस इल्म और इरादे से गुनाह करना छोड़ देना, ये वकूफ कल्बी होता है। वसवसा इज अ होल डिफरेंट बॉल गेम। हाउ लॉन्ग डिड द कलम टेक टू राइट ऑन द लोहे महफूज, इंशाल्लाह पूछ के बताएंगे। ठीक है, जब इंशाल्लाह मुलाकात होगी ना मिस्टर कलम से, तब आपको बताएंगे। आपको आपकी पहले मुलाकात हो जाए तो आप बता दीजिएगा, वैसे जन्नत में इंशाल्लाह ये सारी चीजें पता चल जाएंगी। तो मुझे नहीं पता, सिंपल है, मुझे नहीं पता। ठीक है, और कभी सुना भी नहीं, किसी और ने कहा उसके बारे में कुछ। बहरहाल तो तारीख नुज़ूल कुरान फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में पढ़ते हैं। अगर किसी और को कोई सवाल पूछना है जिसका अगर मुझे जवाब आता होगा दे सकूंगा, नहीं आता होगा तो इसी तरह से कोई मलाप अदा कर दूंगा। ठीक है, वरना क्लास का टाइम तो खत्म हो चुका है यहाँ पे, फिर हम रोकते हैं। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।